آمين يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد في عال جنة الخلد. آمين يا رب العالمين. आज का सबक सूरह इसरा आयत नंबर 26 से 39 तक। मैंने जैसे आपको बताया कि ये सूरत जो थी ये मक्की दौर के आखिरी वक्त में तकरीबन उतरी थी और आगे मदीना में जाके एक नई रियासत की तश्कील भी होने वाली है। अब ऐसे दौर में वो अहकामात दिए जा रहे हैं कि जो एक इस्लामी माशरे को पाकीज़ा रखने के लिए, सही चलाने के लिए जो बेसिक प्रिंसिपल्स होने चाहिए, जो उस माशरे के अंदर खसूसियात होनी चाहिए, जो ज़ाबते होने चाहिए, वो रूल्स यहाँ पे बयान किए गए हैं। और इनके अंदर हम पढ़ चुके हैं दो रूल्स, दो प्रिंसिपल्स, के एक तो मुस्लिम माशरा तौहीद के ऊपर कायम होने वाला, तौहीद उसका बेसिक जो पिलर है ना वो तौहीद है। और इसलिए आप देखते हैं कि अल्लाह ताबुदू इल्ला इया आयत 23 में अगर आप देखें तो सबसे पहले तौहीद की बात की गई, शिर्क की नफी ऐसे माशरे में होनी चाहिए। ये नहीं कि जगह जगह शिर्क के अड्डे बने, ये नहीं होना चाहिए। और आप आज के दौर में इन आयात के तनाजुर में मुस्लिम ममालिक को देख सकते हैं, जहाँ पे भी इस्लामी एक माशरा है वहाँ पे इन में से कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनके ऊपर अमल किया जा रहा है और कौन कौन से हुक्म हैं जिनको तोड़ा जा रहा है। क्योंकि इससे आपको बड़ी अच्छी तरह समझ आएगी कि अल्लाह ताला कैसा माशरा चाहते हैं, कि एक इस्लामी माशरा किन अकदार पे, किन बेसिस पे खड़ा हो, उसकी क्या कदरें होनी चाहिए, क्या वैल्यूज़ होनी चाहिए उसके अंदर। और अगर कोई माशरा इन वैल्यूज़ को तोड़ता है, इन प्रिंसिपल्स को पीछे डालता है, तो सरीहन अल्लाह ताला की नाफरमानी करता है। क्योंकि आज की आयात में हम एंड में पढ़ेंगे ये बात कि ये जो इसके अंदर बुराइयाँ बताई गई ये अल्लाह ताला की हाँ बहुत नापसंदीदा है। जिस माशरे में नापसंदीदा काम हो रहे हैं वो माशरा ना तो तरक्की कर सकता है ना तो अल्लाह ताला की रहमत का उम्मीदवार हो सकता है। लिहाजा ये प्रिंसिपल्स अपने माशरे के अंदर हमें इस्टेब्लिश करने हैं, इनके ऊपर चलना है, तभी वो एक मुस्लिम माशरा, इस्लामी माशरा कहलाएगा, वरना किसी तरह भी नहीं कहला सकता। तो जहाँ पर तौहीद का बोलबाला और जहाँ पर वालदेन के साथ एहसान हो, एहसान की भी हम बात पढ़ चुके, एहसान अदले का बदला नहीं होता, इन्होंने हमारे साथ ऐसा किया, ये बचपन में ये करते थे, मुझे मारा, मुझे पीटा, मुझे तवज्जो नहीं दी, मुझे ये किया, इतने गिले शिकवे और उसके बाद आप सोचते हैं कि वालदेन के साथ आप अच्छा सलूक कर सकेंगे। नहीं, एहसान इज वन वे ट्रैफिक, रिमेंबर दिस। एहसान क्या है? वन वे ट्रैफिक है, एहसान इज नॉट टू वेज। इन्होंने किया तो मैं ये करूंगी, इन्होंने नहीं किया तो हमें भी नहीं करना, नो। और यहां पर तो थोड़े हकूक की बात की गई है। सूरह निसा में अगर आप देखें तो वहां पे भी इसी तरह की आयत आती है, वअबुदुल्लाह वला तुशरिकु बिही शैआ वबिलवालिदैन एहसाना वबिज़िल क़ुरबा वलियतामा वलमसाकीन। और उसके अंदर और भी कई फेरिस्त, उसमें लिस्ट लंबी है, उसमें और भी कई ताल्लुकात को निभाने का और एहसान करने का हुक्म। तो यहाँ पर खास तौर पे वालदेन के जब वो ओल्ड एज में हो जाए तो उनके लिए ऐसी कोई भी बात करना जो नासीपा हो, अदना अदना सा भी नागवारी का इजहार जिसमें हो और अदना तरीन दर्जा उफ कहने का है, वो इतना उफ भी नहीं कहना। उफ इज द लीस्ट, और अब उससे बड़ी बड़ी चीजों की तो वैसे ही नफी हो गई जब उफ कह दे। ये मतलब नहीं कि उफ नहीं कहना लेकिन बाकी सबको कह दो, सब कुछ कह दो, यू आर नॉट फेयर, और आप जो है ना नॉनसेंस बातें करते हैं, आप इलॉजिकल बातें करते हैं, आपको क्या पता, आप चुप करके बैठे हैं, आप ऐसे करें, यू आर मीन, और ऐसी ऐसी बातें, ये किसी तरह भी फिर सही नहीं। बदसलूकी की अदना तरीन सूरत ये भी है कि फेशियल एक्सप्रेशंस नागवारी के बना ले, वो भी नहीं है, हूँ कह देना ये भी मना है, बल्कि उनके साथ बात करो तो नरमी के साथ करो। और खास तौर पे बूढ़े वालदेन का क्यों कहा गया, इसलिए कि बूढ़े वालदेन जब हो जाते हैं तो वो बच्चों की तरह हो जाते हैं, उनके साथ सब्र की ज्यादा जरूरत होती है, उनकी अकल वैसी नहीं रहती, अकल भी उनकी माऊफ सी हो जाती है, बच्चों जैसी बातें करने लगते हैं, नासमझी की बातें करने लगते हैं, कभी कभी अनफेयर भी हो जाते हैं और वाकई हो जाते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने फिर भी फरमाया कि नहीं, वग़फ़िर लहुमा जनाह सुल्म, आप उनके सामने अपने कंधे झुका के रखे। बुजुर्ग थे तो वो अपने वालिद के सामने, वालदेन के सामने सीधे खड़े नहीं होते थे, तो लोग पूछते आप सीधे क्यों नहीं खड़े होते, फरमाया क्यों, अल्लाह ताला ने फरमाया नहीं कुरान में कि अपने कंधे झुका के रखो उनके सामने, ये नहीं है, आजजी की अलामत है, आजजी। इमाम बगवी ने अपनी तफसीर में लिखा है, सईद बिन मुसैद ताबई के हवाले से लिखा है कि एक मिसाल दी है कि इसकी मिसाल यूं समझे कि इंसान उस वक्त ऐसे नरमी से बात करना इंसान का ऐसे हो कि जैसे इंसान नौकर है किसी का और उसका आका बहुत सख्त मिजाज हो, और नौकर से कोई गलती हो जाए तो अपने आका के सामने जब खड़ा होगा बात करेगा तो उसका रवैया कैसा होगा, ऐसे ही इंसान अपने वालदेन से बात करे हमेशा। ये है कौलन करीमा भी, और ये है अपना झुका के रखना अपने आप को। ये नहीं कि आपने हमें कुछ दिया ही नहीं, आपने तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, आपने तो मेरा यहाँ पे रिश्ता करके मेरी जिंदगी खराब कर दी, आपने मुझे कभी अच्छा ही नहीं समझा, आपको तो बात ही नहीं करनी आती, आपको तो ऐसे, ये तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, ये ताने सुनाना, ये इस तरह की बातें करना तो बहुत बड़ी हैं, जबकि आप उफ भी नहीं कह सकते। और इसके अंदर ये नहीं देखा जाएगा कि वो वालदेन नेक थे कि वो वालदेन बद थे, वो वालदेन वालदेन भी जाहिर इंसान है, बुरे भी इंसान होते हैं और अच्छे भी होते हैं। वालदेन डजंट मीन कि वो कोई नबी है, वालदेन आम इंसान ही है, लेकिन उनका जो औलाद उनकी है उसको उनके साथ भलाई ही करनी है। वालदेन चाहे कितने भी इररीजनेबल हो जाएं, उनका हिसाब किताब अल्लाह के यहाँ है, जो अल्लाह ताला उनसे हिसाब लेगा, लेकिन औलाद को अल्लाह ताला ये इजाजत नहीं देता कि वो वालदेन को कटहरे में खड़ा कर दे और आप उनसे हिसाब किताब शुरू कर दे, पूछगिछ शुरू कर दे, आपने बचपन में ऐसे क्यों किया था, आपने ये क्यों किया था, वो क्यों किया था, और इसकी बेस पे उनसे बदसुलूकी करे, किसी तरह पे भी नहीं ये जाए। अब कई दफा वालदेन ने विरासत की तकसीम में, कई दफा लेने देने में बच्चों के, कई दफा मोहब्बत में इंसाफ नहीं किया होता, कई दफा किसी एक को ज्यादा लाड प्यार करते हैं, कोई उनका फेवरेट बच्चा हो जाता है, दूसरे को इग्नोर किया होता है, या कई दफा किसी बच्चे से ज्यादा वो शफकत का मामला करते हैं, किसी तरफ से आपको शिकायत होती है कि वो जी फलां बच्चा उनको उनके ऊपर खर्च बहुत करता है इसलिए उसको अच्छा समझते हैं, हम खर्च नहीं कर पाते तो हमें नहीं अच्छा समझते। ये वालदेन का उनके अल्लाह के हाँ पूछगिछ है जो भी है, लेकिन कभी भी औलाद को ये इजाजत नहीं है कि वो वालदेन के आगे अपनी आवाज को रेज करें या उनको बुरा भला कहें या उनके साथ बदतमीजी करें, झिड़कना तो दूर की बात है। तो ये हम सब पढ़ चुके हैं ये सारी बातें। अब आगे ये देखें, ये वाले मैंने आपको बताया था, अपने अब्बास फरमाते हैं कि एक इस्लामी जो सॉरी, जो तौरात में जो अहकामात दिए गए उनका खुलासा ये आयात है। तौरात के तमाम अहकामात का खुलासा, यानी तौरात में भी यही चीजें थी, यहूदियों को भी यही बात कही गई, टेन कमेंडमेंट्स में भी यही था, और हमें भी ये बात कही गई। अल्लाह ताला ने फरमाया ना, देखिए आप स्टार्ट में ही देख लें इसका, वकदर रब्बू का, अल्लाह ताला ने फैसला कर दिया है। ये फैसला किसका है? याद रखिएगा, ये बातें ये नहीं है कि कोई आपको ऐसे ही लेक्चर दे रहा है, नसीहत कर रहा है, अल्लाह ताला ने आपको ये हुक्म दिया है। और जब अल्लाह का हुक्म आ जाए फिर इन बातों को पीछे करना, ये अपना अपनी बर्बादी करना ही है। और आप ये भी समझ जाएं कि ये जो यहाँ पे वालदैन की बात हुई है ना, ये समझ लें वालदैन जो है ये जन्नत का टिकट है। आप चाहे तो आप जन्नत के टिकट को गंवा दें, और चाहे तो आप जन्नत के टिकट को इस्तेमाल कर लें। और आपके घर में हैं, आपसे दूर हैं, या आप फौत हो चुके हैं, जो जिस तरह से भी मामला, उसके मुताबिक करना। जो जिनके पास तो वालदेन हैं उनके समझ लें घर में अल्लाह ने उनको टिकट दे दिया जन्नत का। अब आगे वो इसको अगर जाया कर देते हैं अपने किसी अमल से, तो ये उनकी बदकिस्मती होगी। अब इसके बाद किसका हक है, वालदेन के बाद किसका हक सबसे ज्यादा है? आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आयत नंबर 26 से हम देखते हैं। वआती दल कुरबा हक्कहू, और दो रिश्तेदारों को उनका हक, माँ बाप के बाद आपके हुस्ने सलूक के सबसे ज्यादा हकदार कौन है? दल कुरबा, जो करीबी हैं, यानी जो आपके रिश्तेदार हैं, माँ की तरफ से भी जितने रिश्ते चल रहे हैं और बाप की तरफ से भी जितने रिश्ते चल रहे हैं, दादा दादी चचा पुप्पी उनके बच्चे को, और इसी तरह माँ की तरफ से नाना नानी, खाला खालू, मामू मामानी उनके औलादें, इस तरह से आगे हदीस में है, अपनी माँ से सलूक करो और अपने बाप से, फिर जो ज्यादा करीब हो और जो ज्यादा करीब हो। और हाँ, बहन भाई, सबसे पहले तो बहन भाई ही आ जाते हैं, क्योंकि बहन भाई माँ बाप के साथ आपकी वो उनकी आगे एक्सटेंशन है आपके वालदेन की, तो उनको उनका हक दो। हक, हम तो नहीं समझते कि रिश्तेदारों का हमारे ऊपर कोई हक है। हक जो है ना, जो हक होता है वो दूसरे का हक हमारे ऊपर क्या हो जाता है? फर्ज। यानी जब हम कहते हैं कि उसका हमारे ऊपर हक है, तो ये भी एक वन वे ट्रैफिक हो गया। ये नहीं सोचना कि मैंने तो इनको इतना दिया, इन्होंने मुझे क्या दिया। ये बहुत जल्दी आ जाता है, शैतान लाता भी है। और बाकी हमें सबको चाहे ये बातें पता भी है ना, फिर भी हमें बार बार इनको दोहराने की जरूरत है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे इंसान देखता है रिटर्न में क्या मिला, मुझे क्या दे रहे हैं ये, इन्होंने तो कुछ भी नहीं दिया, और ये कभी थैंकफुल होते ही नहीं। तो ये मुकाबले की बात नहीं है कि उसने दिया तो मैंने दिया, तो मैंने दिया और उसने कितना दिया, नहीं। यहाँ पे है उसका हक कहिए, आपकी कमाई में भी हक है, आपके हुस्ने सलूक के लिए भी उसका हक है। आप अब मसलन ईद आ रही है, रूठे भी रिश्तेदारों को फोन करके उनके साथ मामला दुरुस्त कर लें, उनका हाल अहवाल पूछ लें। हमें तो ये भी नहीं पता होता कि हमारे रिश्तेदार कौन है, कहाँ है, किस हाल में है। किसका पता चलता है? कहीं कोई बता देता है, हाँ जी फलां हमारी रिश्तेदार वो बेवा हो गई, फलां है वो यतीम हो गए बच्चे वो, तो हम बस ठीक है, हो गए तो हो गए, जस्ट न्यूज़ फॉर अस। नहीं, उनका हक है, ये अल्लाह ने मुकरर किया। और ये ऐसा नहीं है कि लेन देन का मामला है, ये कोई आप बाजार में नहीं खड़े कितना किसने दिया और कितना मैंने दिया, बल्कि कुरान कहता है कि ये उनके हक, उनके हकूक हैं आपके ऊपर। लिहाजा जो अदला बदला है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अदले बदले है वो सिला रहमी करना नहीं होता। दरअसल सिला रहमी करने वाला तो वो होता है कि जो आपसे कटे आप उससे जुड़ो, तब है सिला रहमी। अदला बदले से तो फिर आप किसी अजनबी के साथ भी कोई भी अपराध चलता भी है, अदला बदला तो उसके साथ भी, आप किसी को कुछ देते हैं वो आपको कुछ दे देता है, वो तो चलता ही है। लेकिन कुरान हमें कहता है कि ये ऐसे उसको दो जैसे कि उसका आपके ऊपर हक है, ये नहीं देखना ये मेरे किसी काम आने के काबिल हैं भी कि नहीं, कल को इन्होंने मेरे क्या काम आना है, इनसे मुझे क्या फायदा मिलेगा, बल्कि ये सोच के दो कि अल्लाह का हुक्म है, और तब कोई एहसान नहीं हो सकता ये, इसलिए कि आप उसको उसका ही हक दे रहे हैं, ये उसी का हक था। याद रखें दोस्त अहबाब से तो सभी अच्छे होते हैं, पता तब चलेगा कि आप रिश्तेदारों के साथ कैसे हैं, उनके साथ आपका सलूक क्या है। तो रिश्तेदारी के अंदर हमें बहुत कुछ सहना पड़ता है, रिश्तेदारी निभाना आसान नहीं होता, इसलिए ही रिश्तेदारों को उनका हक देने का अल्लाह ने हुक्म दिया है, और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, कतई रहमी करने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। रवाहुल बुखारी, ये बुखारी की रिवायत है, आप इस कान खोल के सुन लें, कतई रहमी करने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। अब यहाँ तो रिश्तेदारों के साथ जोड़ लें, तो यहाँ पे नहीं जोड़ना तो फिर जन्नत को छोड़, क्या ये वर्थ है कि रिश्तेदारों से तोड़ना हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है, और हमारी अना इतनी बड़ी है, और हम इतना अपने आप को कोई चीज समझते हैं, और हमारा गुस्सा इतना है, या उसने मेरे साथ ज्यादती ही ऐसी की है कि बस मैं नहीं इससे दोबारा जोड़ूंगी, तो फिर जन्नत को छोड़ दे। कुछ भी वो कर ले, लेकिन उनके साथ तोड़ा नहीं जा सकता। और यहाँ पे तो रहम के रिश्ते भी नहीं कहा गया, यहाँ पे तो कहा गया जल कुर्बा कराबतदार। दो तरह के कराबतदार है ना, एक तो हमारे साथ जो नसब के रिश्ते हैं, खून के रिश्ते हैं जैसे मैंने आपको बताया, और एक जो है वो ससुराली रिश्ते होते हैं, शोहर की तरफ से रिश्तेदार, उनके साथ भी नहीं तोड़ना, उनको भी उनका हक देना है। और बहुत सारे गिले शिकवे शिकायतें होती हैं, इसने ऐसे कर दिया, उसने वो कर दिया, ये कर दिया वो, इसमें बहुत सारी तो गलत फहमियां आती हैं। चलो कहीं गलत फहमी नहीं भी है और वाकई ही ऐसा हुआ भी है, तब भी तोड़ नहीं सकते, हाँ वाजबी तौर पे आप रख सकते हैं अगर वाकई ऐसा है, बाकी तो अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। और हमें भड़काने वाले भी बहुत होते हैं, देखो तुम्हारे साथ ऐसा किया, तुम ही पागल हो, तुम ही उनके पीछे लग रही हो, तुम ही उनका पीछा नहीं छोड़ती, वो तुम्हारे साथ ये करते हैं, छोड़ो इनको, या छोड़ना चॉइस नहीं है ना हमारी, क्या करें, बल्कि जोड़ना हमारे लिए जरूरी है। और जिसके लिए जो ये पसंद करता है ना कि उसकी रोजी में फरागी हो, उसकी उम्र दराज हो, उसको चाहिए कि सिला रहमी करें, ये भी हदीस है बुखारी की। तो आज देख लें कि दोस्त अहबाब से तो हम जुड़े हुए हैं, खाला चाचू, दोस्त अहबाब को तो मैं खाला बनाई हुई हैं, उन्हीं में चाचू बनाए हुए हैं, उन्हीं में ये बनाए, लेकिन जो असल रिश्ते हैं उनके बारे में कोई खैर खबर ही नहीं, उनका कुछ पता ही नहीं। इसीलिए इस चीज को समझें कि हम अपनी औलादों को भी बताएं कि हम आपके रिश्तेदार कौन है, उनका खुद भी हाल अहवाल मालूम करें, और अपने बच्चों को भी ताकीद करें, और बच्चों को कब पता चलेगा कि उनके रिश्तेदार कौन है, जब आप उनसे मिलवाएंगे, अगर आप उनसे मिलवाते ही नहीं, कभी उनके बारे में पूछते ही नहीं, कभी उनसे मिलना जुलना ताल्लुक रखते ही नहीं, कभी हुआ कोई शादी हो गई या कोई मर हुई तो तब उनके पास चले गए, वरना साल साल गुजर जाते हैं, उनको पता ही नहीं, तो फिर बच्चों को भी कैसे पता चलेगा कि हमने कौन से रिश्ते निभाने। तो खुद भी राबते में रहे, बच्चों को भी रखाएं, क्योंकि देखिए याद रखिए आपको किसी का कितने भी गिले शिकवे, आपके बच्चों की जो दादी फूफी चचा ये मामू खाला ये सब उनके रिश्ते तो हैं ना, उनके साथ उन आप खुद भी गुनाहगार होते हैं जब तोड़ते हैं, और उनको भी गुनाहगार करते हैं जब उनको कहते हैं कि तुमने भी नहीं मिलना, वो तुम्हारी माँ के साथ ऐसे और तुम जाके उनसे मिल रहे हो, उनको भी आप गुनाहगार करते हैं। तो ये रिश्ते जो निभाना है ना, ये माना कि बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि यहाँ से आपको वो एप्रिसिएशन नहीं मिलती जैसी फ्रेंड से मिलती है, और हो सकता है वो आपके जैसे जो आपका माइंड सेट है, जिस तरह से आपके घर का तरीका है, उस तरह से चलने वाले नहीं। मिसाल के तौर पे आपका घर बड़ा दीनदार है, वो बड़ा डिफरेंट तरह के लोग हैं, फिर भी निभाना। किसी सूरत भी ऐसा नहीं है कि रिश्तेदारी फिर खत्म कर देनी है क्योंकि वो वैसे नहीं है जैसे आप। ये निभानी क्यों है? इसलिए नहीं कि वो आपको पसंद है कि नहीं पसंद, इसलिए नहीं कि वो आपकी लाइक माइंडेड है या नहीं, इसलिए कि ये अल्लाह का हुक्म है। इसीलिए हमें कुछ पैसे खर्च करके अपनी फैमिलीज के साथ विजिट भी करना पड़े बैक होम, ताकि हम अपने बच्चों को मिलाएं वहां पे अपने रिश्तेदारों से, तो वो भी करना चाहिए क्योंकि ये हमारे ऊपर जिम्मेदारी है, वरना रिश्तों की पहचान खत्म हो जाएगी। तो इसमें एफर्ट भी लगेगी, इसमें माल भी लगेगा, इसके अंदर आपका टाइम भी लगेगा, तो इसको अहमियत दें, इसको अहम समझें कि ये जरूरी है, क्योंकि ये चॉइस होती है ना। अगर आप नहीं भी मिलेंगे तो कोई पूछेगा थोड़ी आपको, कहीं कोई सजा थोड़ी है इसके ऊपर किसी कानून में कि जो नहीं मिलेगा, जो तोड़ेगा तो उसके लिए ये सजा है। बाकी तो जरायम की सजा है, इसमें कोई सजा नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई बुरा नहीं समझेगा आपको, वो पूछने वाला ही नहीं। लिहाजा वही ये करेगा जो अल्लाह ताला के हुक्मों का पास रखता हो, जो रिस्पेक्ट करता हो अल्लाह के हुक्म की। तो हम में से कौन है जो अल्लाह ताला के हुक्मों को रिस्पेक्ट देते हैं? हमने मिलाना है, हमने जोड़ना है, और हमने जोड़ के रखना है अपने बच्चों के रिश्तों को भी। हमने मिसाल बनना है, जैसे आप खुद होंगे वैसे ही आगे बच्चे, क्योंकि आगे का दौर ऐसा आ रहा है जिसमें किसी को किसी की परवाह नहीं। वालदैन को बच्चे नहीं पूछते तो आगे बच्चे अपने वालदैन को अगर नहीं पूछते, आगे रिश्तों को क्या पूछेंगे? अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम आगे उनके रिश्तों को भी प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी मोहब्बतें कायम रखने के लिए, उनके साथ मिलें जुलें, रिश्तेदारों को बुलाएं, उनके यहाँ जाएं, ताकि बच्चों की भी एक बॉन्डिंग हो उनके साथ, बॉन्डिंग कायम करें, ताकि हम नहीं भी रहें और हमारे पास सवाल हो तो हम ये कह सके कि अल्लाह हमने तो रिश्तों को जोड़ने की कोशिश की थी, बाद में वो नहीं मिलते या मिलते हैं वो उनके ऊपर, इन हमने क्या किया। और अगर हम खुद ही लापरवाह हैं तो आगे समझ लें कि वो रिश्ते यहीं पे खत्म हो गए। इसीलिए बच्चों को पता ही नहीं होता कि मेरी माँ की खाला कौन है, मेरी माँ की चच्चा कौन है, या खाला जात बहन भाई कौन से हैं, और या बाप की तरफ के कौन से हैं, कुछ पता नहीं होता, क्योंकि ये नेग्लिजेंस वालदेन की तरफ से होती है, क्योंकि तो वालदेन खुद भी इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते। और आगे आगे तो दौर ऐसा आ रहा है कि मसरूफियत इतनी है कि किसी को फुर्सत ही नहीं कि किसी का हाल भी पूछ ले। लिहाजा आपसे ये पूछनी होगी कि आपने अपने दोस्तों से कितना निभाया, दोस्तों के साथ आप कितनी पार्टीज करती थी, दोस्तों के साथ आप कितना मिलके बैठती थी, आपके दोस्त कितना आपका हल्का अहबाब बड़ा था, आपके कितने दोस्त आपके चाहने वाले थे, ये आपसे पूछ नहीं होनी। आपके चार दोस्त हैं या आपके दोस्तों की लिस्ट इतनी लंबी है कि शादियों पे आप 100 लोगों को बुला रहे हैं लेकिन रिश्तेदारों को नहीं बुला रहे, क्योंकि हमारे रिश्तेदार या तो गरीब हैं इसलिए हम उनको नहीं सामने लाना चाहते, या हमारे रिश्तेदारों में से हम उनसे रूठे हुए या वो हमसे रूठे हुए, लिहाजा वो आए ही नहीं, या हमें नहीं इतना टाइम कि हम उनको मनाएं। लिहाजा हमारी शादियों में सारे हमारे दोस्त अहबाब तो भरे हैं, रिश्तेदारों की कोई परवाह ही नहीं। तो ये नहीं होना, इसलिए कि यहाँ पे पहला हक बताया गया उनका, उनका हक है आप कि आप उनसे हुस्ने सलूक करें, उनका हक है कि आप उनके ऊपर स्पेंड करें। अब जरूरी नहीं कि रिश्तेदार गरीब हैं तो आप उनके ऊपर स्पेंड करेंगे, रिश्तेदारों को इस तरह भी स्पेंड किया जा सकता है कि उनको गिफ्ट्स दें, उनके गिफ्ट दे के उनके दिल जीते। किसी ने बड़ी प्यारी नसीहत की अपनी बेटी को कि जब वो अपने ससुराल में गई तो उसने कहा कि उस माँ ने कहा अपनी बेटी को कि जब भी आपको वहाँ पे किसी की कोई चीज़ नागवार गुजरे तो आप गिफ्ट देना शुरू कर देना, और खूब गिफ्ट्स देना, आप देखेंगे कि वो जो उनकी कड़वाहट है वो मिठास में बदल जाएगी। तो रिश्तेदारी निभाने के लिए ये भी एक अच्छा तरीका है कि आप गिफ्ट दिया करें, आप देखेंगे कि उससे बहुत फायदा होगा। इसी तरह हदीस में ये भी आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया बेहतरीन सदका क्या है, तो फरमाया जो रिश्तेदार पड़ोसी हो, यानी पड़ोसी अगर रिश्तेदार है ना तो उसके 3 अजर आपको मिलेंगे उसके ऊपर स्पेंड करने में, एक रिश्तेदारी का, दूसरे वो कि वो पड़ोसी है, तीसरा सदका करने का। सदका सिर्फ किसी पे भी किया जाता तो 1 अजर था, लेकिन अब 3 अजर होगा। तो अगर इंसान यही सोचने लगे मैं कितना दूं, उसने कितना दिया, फिर मैं गिनूं, फिर उसके बाद देखूं अच्छा मैं उतना ही उसको दूं और इतना ही उसके बच्चों को दूं, ये आप क्या रिश्तेदारी निभा रहे हैं, ये तो सौदा कर रहे हैं आप। जैसे हम बाजार में खड़े होकर चीज खरीदते हैं, भाई मैं $10 दूंगी तो 10 की चीज मिलनी चाहिए, ये तो सौदेबाजी है ना, ये तो फिर निभाना ना हुआ। लिहाजा रिश्तेदारी निभाना वो है कि जब इंसान इसको समझे कि मैंने करते जाना है, वो करे या नहीं करे इसका हक है मेरे ऊपर, अपना फरीजा समझ के, अपनी जिम्मेदारी समझ के करें। और चैरिटी बिगिंस एट होम है ना एक मुहावरा, तो वाकई करीब से शुरू करें। ये नहीं कि हम चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस में देखें वहां पे जी, वो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन बेचारी भी ढूंढ रही होती है लोगों को जो मुस्तहिक होते हैं, लेकिन अगर हर बंदा अपने रिश्तेदारों की केयर करना शुरू कर दे तो कोई भी मुआशरे में बेसहारा नहीं होगा, क्योंकि कोई किसी ना किसी का तो रिश्तेदार होगा ना, कितना प्यारा वो मुआशरा हो जाएगा जिसमें बगैर लालच के, बगैर गर्ज के, बगैर किसी एहसान के, उनके ऊपर भी एहसान नहीं करना जी हमने आपको इतना फलां वक्त में आपकी शादी पे हमने तो इतना खर्चा किया था और आपने तो हमें बुलाया नहीं था, हमने भी नहीं इनको बुलाना, और वो तो हमारी शादी पे आए नहीं थे, हमने भी नहीं जाना। नहीं, कोई एहसान नहीं है किसी के ऊपर, बगैर एहसान के जहां पे दूसरे की मदद कर रहे हैं, जहां पे दूसरे के साथ अच्छा सलूक कर रहे हैं सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए, सोचे वो माशरा कितना पाकीजा होगा, सोचे उस माशरे में क्या कोई अकेला होगा। तो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन में देने से पहले अपने रिश्तेदारों में नजर दौड़ाएं, आपको डबल अजर मिल जाएगा। जकात में पहले अपने रिश्तेदारों को देखें, रिश्तेदारों में तो नहीं है कोई जो जकात का मुस्तहिक है। फिर वल मिस्कीना, और मिस्कीन को, मिस्कीन वो है जो हैंड टू माउथ है, जो ये नहीं कि उसके जॉबलेस को मिस्कीन कहते हैं, हो सकता है उसके पास जॉब भी हो लेकिन मसला ना इतने बच्चे हैं, फिर और कोई उनके मसले मसाइल, कहीं बीमारी आ गई, कि कहीं के घर की कुछ रिपेयर का मामला आ गया, तो ये सारे खर्चे करना उसके लिए पॉसिबल नहीं है, वो मिस्कीन है, बस गुजारे लायक, मुश्किल से चलता है, सफेद पोश इंसान है, तो उसको भी दें, ये भी उसका हक है। यानी इंसान सोचता है मैं कमाती हूँ मेरा हक है मेरे माल पे, किसी और का कैसे हक हो गया, अल्लाह ताला फरमाते हैं नहीं इनका भी हक है। अब नसबीर और मुसाफिर का भी, मुसाफिर कौन है, जो अपने वतन से दूर है, अपने घर से दूर है, वो मुसाफिर है, चाहे वो मालदार है लेकिन वो मुसाफिर, तो उसका हक बन गया। अब देखिए मुसाफिर भी जब अपने वतन से दूर होता है ना, तो जाहिर है दूसरी, अपने शहर में तो इंसान 100 लोगों को जानता है, लेकिन दूसरी जगह पे होता है तो वो इनसिक्योर फील करता है, अजनबी होता है, चाहे कितने भी होटल्स हो, चाहे कितने भी जगह हो, पर इस शहर के लोगों का काम है कि वो उसके साथ भला सलूक करें। इसीलिए 3 दिन की जियाफत भी है कि आप उसकी मेहमान नवाजी करें। अब कितना प्यारा माशरा हो जहां पे मुसाफिरों की जिम्मेदारी ली जाए, रिश्तेदारों को देखा जाए, मिस्कीन कोई ना रहे, उनके ऊपर स्पेंड किया जाए, वो कितना खूबसूरत माशरा हो, और बगैर गर्ज के, किसी किसी से कोई लालच नहीं है, ये समझ के कि इनका हक है जी, हम क्या करें, अल्लाह ने जिम्मेदारी डाली है मेरे ऊपर, मुझे तो ये करना ही करना है। जहां पे ये एटीट्यूड हो कि वो माशरा कैसा होगा, इमेजिन करें। और साथ साथ ये भी देखते जाएं, जब ये आयात पढ़ रहे हैं ना, तो साथ साथ ये भी सोचते जाएं कि कहाँ कहाँ पे हमें अपने आप को फिक्स करना। अगर आप रिश्तेदारों के साथ अच्छी हैं और आपके सबके साथ ताल्लुकात अच्छी हैं, वो जो भी करते हैं आप उनसे फिर भी अच्छी रहती है, अल्हम्दुलिल्लाह आप एक टेस्ट में पास हो गए। अगर आप मिस्कीनों पे स्पेंड करने वाली हैं, मुसाफिरों पे स्पेंड करने वाली हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आप एक टेस्ट में पास हो गए, दूसरे में भी पास हो गए, तीसरे में भी पास हो, तो अपने आप को इसमें चेक करें वो कहाँ पे कमी है, वहां पे हाईलाइट कर ले कि यहाँ पे मैंने अपनी कमी को पूरा कर, यहाँ पे मैंने अपना फैमिली ट्री बनवाना है बच्चों से, मैंने अपने बच्चों को बताना है, उनके रिश्तेदारों के बारे में बताना है। ये आजकल से गर्मियों की छुट्टियां आप बच्चों को ये टास्क दें, ये होमवर्क दें, उनके साथ बैठे एक फैमिली ट्री बनाए, सब अपने रिश्तेदारों का बताएं, बाप की तरफ से भी अपनी तरफ से भी, और फिर अपने माँ बाप की तरफ से भी जो आपके रिश्तेदार लगते हैं, फिर अपने बहन भाइयों के, उनके बच्चों का, और फिर देखेंगे कितने हद तक हमने अपने बच्चों को एजुकेट किया है रिश्तेदारों के बारे में। अब बहुत सारे लोगों का ये जरूर क्वेश्चन आएगा, वो हमारे साथ ऐसे करते हैं, उसने ऐसे कर दिया। फौरन जैसे ही ये आयतें इस किस्म की आती हैं, ईमेल्स आने शुरू हो जाते हैं, वो तो ये किया, वो तो वो किया, फलाना किया, वैसे किया। मेरे देखें कह देने से कि जी आप उनके साथ फिर ना मिले, आप उनके साथ ऐसे करें, इससे कोई मामला सॉल्व थोड़ी हो जाएगा। तो अल्लाह का हुक्म है, आप खुद देख ले। अब आपने अल्लाह को जवाब देना है, ना मुझे देना है, ना किसी और को, ना मैंने आपको। तो आपको अपने रिश्ते खुद ही निभाने हैं ना, अपनी कड़वाहटें अपनी जनरेशन में ना डालें। अच्छा फिर देखें, वला तुबसिर तबवीरा, और ना तुम बेजा खर्च करो। अच्छा तबजीर का मैंने आपको जैसे बताया ना कि मतलब कहते हैं बीज को फैला देना, ऐसे ही फेंक देना इधर उधर, यानी अपने पैसों को ऐसे ही बेजा फजूल ना फेंके। आप जब तबजीर करेंगे ना, तो आपके पास बचेगा क्या रिश्तेदारों पे, मिसकीनों और मुसाफिरों पे खर्च करने के लिए। और जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे तो सिर्फ इतनी सी लिस्ट है ना, जब सूरह निसा के अंदर आपको वजारिजिल कुर्बा वजारिल जुनूब वसाहिबिल जंब इतनी लंबी लिस्ट आती है, तो वहां पे और भी लोगों का जिक्र है, वहां पे आप जाके वो भी देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इतने लोगों का जिक्र है, और फिर फरमाया देखो बेजा खर्च ना करो, क्योंकि बेजा जब आप खर्च करेंगे तो फिर इतना नहीं आपके पास रहेगा कि आप इनके ऊपर खर्च करें। और ये तबजीर क्या होती है, एक होती है फजूल खर्ची, इसराफ जिसको हम कहते हैं ना, इसराफ होता है जायज जगह पे बहुत ज्यादा खर्च कर दे। मसलन खाना पीना जायज है, लेकिन आप एक खाने के ऊपर इतना खर्च कर दें कि जितना किसी की बेचारे की पूरे महीने की तनख्वाह हो, उतनी आप एक ईट आउट में खर्च करते। इतने महंगे होटल के अंदर चले गए जी, फलां जगह पे मैंने जाना है, वहां पे जाके इतनी सी प्लेट में आपने खा लिया, और इतना महंगा बिल, इतना ज्यादा बिल आया कि कोई बेचारा पूरे महीने का इसमें राशन ला सकता था। ये है इसराफ। या कपड़ा इतना महंगा पहना, इतना महंगा पहना कि पता नहीं कितने लोगों के घरों के कपड़े बन सकते थे, उतने का आपने अकेले ने कपड़ा बना लिया, ये इसराफ है। ठीक है, और इसराफ सिर्फ माल में नहीं होता, वक्त में भी, सलाहियतों में भी, इवन पानी में भी इसराफ है। कि जब इंसान पानी चलाए रखे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया था ना कि अगर आप नहर के पास भी बैठे हो तो तब भी पानी में इसराफ नहीं कर सकते आप, वुजू करने में भी इसराफ हो जाता है जब आप टू मच पानी चला के उसको जाया कर रहे हैं। तो इसराफ सब चीजों के अंदर इसराफ होता है। वक्त, जहां पे वक्त इतना लगाने की जरूरत नहीं, वहां पे वक्त लगाए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं, बस झाड़ू पोछा किए चले जा रहे हैं, किए चले जा रहे हैं, बस उसी को करते जा रहे हैं। भाई इतनी जरूरत नहीं है जितनी कि आप उस चीज के पीछे लग गए, आप वक्त का इसराफ कर रहे हैं, अपनी सलाहियतों का इसराफ भी इंसान करता है। अपनी सलाहियतें अल्लाह ने दी है किसी सही जगह पे लगाने के लिए, आपने पता नहीं कहाँ लगाते जा। और तबजीर तो है नाजायज काम पे खर्च करना, वहां पर खर्च करना जहां पे खर्च करना नहीं चाहिए, यानी ना वो आपकी जरूरत है ना उसके अंदर। मसलन है ऐसी मिसाल के तौर पर, जस्ट छोटी सी एग्जाम्पल है, सोफा जरूरत है, मेज जरूरत है, शीशा जरूरत है, ये जरूरत है, लेकिन डेकोरेशन पीसेस में हद से ज्यादा इसके अंदर खर्च कर देना। या एक शादी में आपने देखा होगा, उसकी व्हाट्सएप पे भी बहुत जगह पे वीडियो शेयर हुई कि कितने ज्यादा खर्च किया गया था, 16 करोड़ रुपया उसके ऊपर खर्च हुआ था उस एक शादी पे, डेकोरेशन में सिर्फ, पता नहीं कहाँ से चीजें क्या लटक रही। ये तबजीर है, आतिशबाजी, ये फायरवर्क्स, तबजीर है, पतंगबाजी करना तबजीर है, यानी इस ये नाजायज जगह पे खर्च करना तबजीर, यानी बेजा और बेपरवाह होके उसके ऊपर खर्च करना। तो तबजीर करना गाने बजाने के ऊपर, इनके ऊपर नाजायज काम है, उसके ऊपर इतना बेतहाशा खर्च किया हुआ है, और हमारा देख ले नमूदो नुमाइश के ऊपर, शो ऑफ के ऊपर जो हम खर्च करते हैं, जो हम अपनी शादियों पे खर्च करते हैं, कई उनमें चीजें तबजीर की। हालांकि शादी करना तो हलाल जायज चीज है, लेकिन उसके ऊपर भी, उस शादी के नाम के ऊपर वो उड़ाते हैं, इतना उड़ाते हैं कि बेदर्दी से जिसको कहते हैं उड़ाना। तो इसराफ और तबजीर के अंदर फर्क है, और इसमें चाहे थोड़ा सा भी खर्च किया जाए, जो नाजायज जगह पे खर्च करना है या हराम जगह पे खर्च करना है, वो एक एक डॉलर भी खर्च कर दिया तो वो भी हराम है, वो भी बुरा है। तो फरमाया बेजा खर्च ना कर। इन्नल मुबदीन कानू इख्वान शयातीन, जो मुबज़िर लोग होते हैं ना, वो तो शैतान के भाई हैं। आज बेजा खर्च करने के ऊपर भी, ये भी एक स्टेटस की बात समझी जाती है कि देखो हमने इसके ऊपर कितना लगाया। लोग बल्कि इसकी वीडियोस बना के शेयर करते हैं और शो ऑफ करते हैं, और इसके अंदर भी बाकायदा बताते हैं दूसरों को, इसके भी इश्तिहार देते हैं कि देखो हमने कितना करा, मेरे तो इतना लगा इस चीज के ऊपर। हालांकि ये तबजीर में आता है, और ये इख्वान शयातीन है, इबलीस के भाई हैं। कि किस तरह इबलीस के भाई हो गए, कैसे, कि जैसे इबलीस नेगेटिव कामों में अपनी अपना आप लगाता है, इसी तरह इन्होंने भी नेगेटिव चीजों पे खर्च किया, गलत चीजों पे खर्च किया। इसी तरह इसका एक और माना भी है कि ये अपने अमल में इबलीस से मुशाबहत रखते हैं, इसलिए उसके भाई हैं। जो काम इबलीस करता है ये कर रहे हैं, यानी जिस चीज को भी नफ्स ने कह दिया ना कि ये बड़ी अच्छी है, अल्लाह रसूल का हुक्म जो कुछ भी हो बस वही काम करने लगे। नफ्स ने कहा कि भाई मुझे ये चाहिए, या ये एंटरटेनमेंट, या ये ऐसी चीज, या ये गलत काम है, इसके ऊपर खर्च करने का मेरा दिल करता है, बस इसमें फन है, ये एंजॉयमेंट है। तो जिसको नफ्स ने डेकोरेट करके, खूबसूरत करके दिखा दिया, वही करने लगे। तो यही काम तो शैतान करता है, कि उसने भी अल्लाह के हुक्म को नहीं देखा, जिस चीज को उसके नफ्स ने मुजयन करके दिखा दिया उसने वही किया। तो इख्वान शयातीन है ये। इसी तरह दूसरा इसके बारे में इमाम कुर्तुबी ने ये लिखा है कि इख्वान शयातीन, इस तरह के शैतान ने भी जस्टिफिकेशंस दी ना अपने काम की। तो ये भी कहते हैं कि हाँ ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये वजह है, ये वजह है। तो अल्लाह के हुक्म को नहीं देखते, उनके पास जस्टिफिकेशंस है अपने काम की। इसी तरह एक और चीज भी इमाम कुर्तुबी लिखते हैं, इख्वान शयातीन ये इस तरह है कि कयामत के दिन ये इनका जो अंजाम होगा शैतान के साथ होगा, हशर वहां पे उसके साथ होगा, इसलिए ये इनको कहा गया इख्वान शयातीन। ठीक है, तो मुबज़िरीन जो है ना, वो इख्वान शयातीन है, ये छोटी बात नहीं है। इंसान सोचता है मैंने कमाई की, मैं जिधर मर्जी लुटाऊं, मैंने मेहनत से कमाया ना, मेरे पैसे हैं, मैं जहां मर्जी खर्च करूं, मुझे कौन होता है रोकने वाला कोई। पहली सोच ही गलत है, इसीलिए आगे भी गलत आ रहा है। पहली सोच कैसे गलत है, जब आपने ये समझ लिया कि मेरे पैसे हैं, ये तो अल्लाह ताला की अमानत है, अल्लाह का माल है। जब ये यहाँ पे आप गलती करते हैं ना, ये नहीं पता कि माल है किसका, तो फिर आगे खर्च करने में भी गलतियां होंगी। और याद रखें, हशर के मैदान में 5 सवालों के जवाब दिए बगैर किसी के पैर हिलेंगे नहीं वहां से। 5 सवालों में एक सवाल ये, माल कहाँ से कमाया और कहाँ खर्च किया। तो खर्च हमारी मर्जी से नहीं होगा, खर्च अल्लाह की मर्जी से होगा। जो अपने माल को समझता है कि ये अल्लाह का माल है, जो मेरे उसने हवाले किया हुआ है, ये है अल्लाह का, मुझे तो उसने अमानतदार बनाया है इसका सिर्फ, तो वो तो नहीं फिर तबजीर कर सकता। और आज देखें बाजारों में कितनी तबजीर हो रही है, जो चीजें ना जरूरत की ना कोई हमारे काम आने वाली, बस उनके ऊपर पैसे बर्बाद कर रहे हैं, बर्बाद किए जा रहे हैं, और सोचते हैं कि ये बहुत हमारी फयाजी और सखावत है। और देखो मैं कितना खुला खर्च करने वाली, ये खुला खर्च करना नहीं होता। वकान शैतान ली रब्बी कफूरा, और शैतान अपने रब का नाशुक्र है। यानी अगर तुम शैतान के भाई बन रहे हो तो ये याद रखना, शैतान तो नाशुक्र है। कफूर शकूर का उलट है, नाशुक्री। शुक्र गुजारी क्या है? कदरदानी, कदर करना। असल में लफ्जी माना शुक्र का क्या होता है? भर जाना, भर जाना, दिल भर जाए किसी की कदरदानी से। अल्लाह ताला ने फरमाया इम्मा शाकिर हुआ इम्मा कफूरा, चाहे तुम शुक्र गुजार बनो या ना शुक्रे बनो। शैतान ना शुक्रा था। अल्लाह ताला के एहसानात इतने ज्यादा हैं, इंसान को चाहिए कि अपने आप को महसूस करे कि मैं अल्लाह के एहसानात तले दबा हुआ। ये महसूस करे, दिल में ये ख्याल हो, जुबान भी इसके तर्जुमान हो, जुबान से भी यही निकले इन अल्हम्दुलिल्लाह या अल्हम्दुलिल्लाह, और अमल से भी वो ये करके दिखाए कि मैं अल्लाह तेरे एहसानात की कदरदानी करने वाला हूँ। ये शुक्र गुजारी, और ना शुक्री इसके ऑपोजिट है, जैसे शैतान ना शुक्रा था। कदर ही नहीं ना दिल के अंदर ये ख्याल कि मेरे रब ने मेरे ऊपर एहसान किया हुआ। तो जुबानी या दिल के अंदर या अमल के अंदर ना शुक्री, ये इंसान को शैतान के रवैये के करीब करती है। शैतान इंसानों के अंदर भी नाशुक्री का रवैया डालता है। जब इंसान कहता है मुझे क्या मिला, मेरे पास क्या है, तो नाशुक्री का रवैया शैतान का रवैया, तो तुम शैतान के भाई ना बनो, शैतान जैसे अमल ना करो, नाशुक्री का रवैया ना करो। माल को उड़ा के, इसको मिस यूज करके, इसको बेजा सर्व करके, जहां पे जरूरत नहीं इसको जाया करके शैतान के भाई ना बनो। शैतान ना शुक्र है, तुम भी ना शुक्री कर रहे हो जब तुम ये करते हो। ये ना शुक्री है ना माल की, उसको जाया करना। अब कहीं हम खाना फेंक रहे हैं, कहीं हम माल को ऐसे उड़ा रहे हैं, बस कोई परवाह ही नहीं, क्योंकि अल्लाह ने हमें दे दिया तो अब हमें फर्क ही नहीं पड़ता किधर भी हम उड़ाएं। ये ना शुक्री है, क्योंकि कोई पता नहीं, ये अल्लाह की दी हुई अमानत है, आज है कल हो सकता नहीं हो। कोई भी लिखवा के नहीं लाया हुआ अल्लाह ताला से कि बस मुझे मिलता ही रहेगा सारी जिंदगी। तो डरना चाहिए इसमें, ना शुक्री से बचना चाहिए, और मत बने शैतान के भाई। माल में अपना ना समझे कि ये मेरा हक है, नहीं, ये अल्लाह की अमानत है। वह इम्मा तो आरी दन्ना, और अगर तुम एराज बरतो इनसे चाहने को, क्या रहमत में रब्बी का, अपने रब की तरफ से रहमत। यानी अगर तुम इनसे इसलिए एराज बदलते हो, क्या मतलब कहा जा रहा है? देखिए इस आयत को आप वैसे नहीं समझ पाएंगे जब तक कि आपको ये समझाया ना जाए। अगर आप तर्जुमा सिर्फ पढ़ें आपको नहीं समझ आएगी। कुछ लोग कहते हैं हमने तो कुरान का तर्जुमा हम पढ़ लेते हैं, हमें खुद ही इतनी समझ है। अब बताएं कि क्या समझ आ रही है इससे? नहीं समझ आ रही ना। तो ये भी एक बहुत प्यारा असूल बताया गया कि अगर कोई आपके पास आ जाए, मसलन जर कुर्बा में से या मिस्कीन में से, कोई मुसाफिर में से, कोई ऐसा जरूरतमंद आपके पास आ जाए और आपके पास नहीं है, और आप चाहने को रहमत अपने रब की तरफ से, यानी अच्छे दिनों का आपको इंतजार है कि कोई हो सकता है मुझे कहीं से माल अब आ जाए, मेरे पास इस वक्त तो नहीं है लेकिन मिसाल के तौर पे मेरी पे आने वाली है या मेरा बोनस आने वाला है, तो उसके अंदर से तो अपने रब की रहमत का आप उम्मीद रखते हैं। तो लेकिन अभी आपके पास नहीं है, तो अब आपने एराज बरत रहे हैं आप उससे, यानी आप उसको नहीं इस वक्त दे सकते, तो फिर क्या है तरजू है? तुम उम्मीद रखते हो उसकी, फकुल लहुम कौल मैसूरा, तो तुम उनसे कहो नरम बात। यानी आपके पास इस वक्त नहीं है, आप इस वक्त नहीं दे सकते, लेकिन आपको उम्मीद है, इस वजह से नहीं आप मना कर रहे कि मेरे पास है तो सही लेकिन मैंने देना नहीं, बस मैंने नहीं देना, अपने पर्स खरीदने में, अपने जूते खरीदने में, अपने और डेकोरेशंस और ये खरीदने में, तो मैं इतना पैसा भी लगा लूं, 200-400 डॉलर भी निकाल दूं, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उससे तो मेरा स्टेटस पता चलता है। लेकिन कोई गरीब मिस्कीन आ जाए, उसके ऊपर 150 भी खर्च करना मुझे मुश्किल लगता है, मैं कहूँ मैंने नहीं देना। ये वाला एराज नहीं, एराज उस वक्त जिस वक्त आप अपने रब की तरफ से रहमत की उम्मीद रखते हैं, यानी आप, आपको पता है कि मुझे कहीं से आ जाना है, इस वक्त मेरे पास नहीं है। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक कबीले वाले आए थे, वो फसादी किस्म का कबीला था, पता था कि ये लोग जो इनको कुछ दे दिया ना, तो ये आगे फसाद ही करेंगे, तो आपसे सर उनसे एराज फरमाया। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे बताया कि अगर आपने एराज बरतना है ना, तो तब भी उसका भी तरीका क्या होगा, अदब सिखाया, एटिकेट उसका ये है कि तब भी उनको झिड़कना नहीं है, तब भी उनके साथ सख्त बात नहीं करनी, तब भी उनको मना करते हुए कि ऐसी नागवारी से कोई ताने नहीं देने, बल्कि मसाइला फला तनहर, अल्लाह ताला ने फरमाया ना, साइल को झिड़को नहीं, झिड़कना नहीं है, बल्कि नरम बात, उम्दा बात, आसानी वाली बात। नहीं फिर आप कह दें कि आप हमें माफ कर दें, अभी हमारे पास नहीं है, इंशाल्लाह जब होगा तो फिर हम आपको जरूर देंगे कुछ ना कुछ, वरना दे दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल ये था, सुभान अल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बहुत माल नहीं होता था, लेकिन कोई आपसे कुछ मांग लेता था ना, तो उसको कभी इनकार नहीं करते थे। एक दफा किसी ने मांग लिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, किसी औरत ने भेजा अपने बच्चे को कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई कपड़ा मांग के लाओ, कुर्ता था शायद, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और कुर्ता नहीं था, एक ही था जो आपने पहना हुआ था, तो फरमा दिया कि मेरे पास इस वक्त नहीं है। तो उसने, वो चला गया बच्चा, और वापस आया और उसने कहा कि मेरी माँ करे जो आपने पहना हुआ है वो ही दे दे, तो आप सल्लम ने वो उतार के दे दिया। इतना ज्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देने वाले थे कि कभी इनकार नहीं करते थे किसी को भी, सुभान अल्लाह। तो इसमें आसानी, इसमें कौलम मैसूरा में ये भी है कि अगर आजकल जरा तंगी है तो आसानी होगी तो मैं दे दूंगी, और दूसरा इसके अंदर क्या है, मतलब कि नरम बात करें और ऐसी बात ना करें जिसमें कोई भी ताना हो, कोई तंज हो। आप लोगों का तो काम ही ये बन गया, आप लोगों को तो मांगने की आदत है, आप लोग तो ऐसे हो गए हो, और ये नहीं कहना, ठीक है। वला तजअल यदक मगलूलतन इला उनुकिका वला तबसुतहु कुल्लल बस्त। अच्छा, दो चीजें बताई गई यहाँ पे, दो चीजों से यानी एक मना किया गया, एक ये कि ऐसा भी ना आपकी जिंदगी में खर्च के मामले में ना आपको अदब सिखाया गया, ना तो ऐसे करें कि अपना हाथ बंधा हुआ रखें अपनी गर्दन के साथ, हाथ बंधा हुआ गर्दन के साथ मतलब क्या, बुखल यानी कंजूसी, यानी आप खर्च ही नहीं कर रहे, ना ऐसा हो वाला तबसुत हा कुल बस्त, और ना ही ऐसा फैला दे कि हर तरफ फैला देना, फतकौदा मलूम महसूरा के उसके बाद आप खुद मलामत ज्यादा हसद ज्यादा बैठ जाए। अच्छा, पहले दोनों चीजों को देख लेते हैं, एक है बुखल की मजम्मत और एक है फजूल खर्ची की मजम्मत, यानी इतदाल का रास्ता। ना तो ऐसा खर्च हो कि भाई आप अपनी जरूरत पे भी नहीं खर्च करते, किसी पे भी नहीं खर्च करते, और आपको बस अपना हाथ बांध के रखा हुआ है अपनी गर्दन के साथ, यानी इसका मतलब है कि आप के लिए खर्च करना इतना मुश्किल है, वो भी नहीं होना चाहिए। ना ऐसा आप फैला दें हाथ को कि फजूल खर्ची पे उतर आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि निजात देने वाली तीन चीजें हैं, मुंजियात यानी दुनिया और आखरत में निजात देने वाली, एक नंबर वन कि चाहे नाराजगी हो या खुशी हो, हकदार को उस हक देना। नंबर टू, मुफलिसी हो या तवंगरी हो, यानी आप चाहे अमीर हैं या गरीब हैं, मियाना रवि इख्तियार करना। नंबर थ्री, तन्हाई हो या फिर लोगों में हो, हर वक्त अल्लाह का डर दिल में होना, हर वक्त अल्लाह से डरते रहना। तो ये चीजें हैं कि जो इंसान को निजात देने वाली, यानी मुफलिस भी है लेकिन फिर भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल ही बुखल कर लिया, और या फिर बिल्कुल अपने आप को दिखाने के लिए कि हम बहुत बड़ी चीज हैं, खुद घर में है नहीं, लेकिन ऐसे उड़ा रहे हैं। और फिर अगर अल्लाह ताला ने आपको माल दिया है, तब भी बुखल से भी परहेज करना और तब भी फजूल खर्ची से भी परहेज करना, इन दोनों हालतों में मियां ना रखें। बाज लोग एक एक्सट्रीम पे होते हैं, बाज दूसरी पे होते हैं, बाज तो ये हद पे आ जाते हैं कि इस कदर कंजूसी, इस कदर बुखल कि अपनी जरूरियात पे भी खर्च करने को वो बहुत समझते हैं कि ये भी नहीं जरूरत, और अपने बच्चों के ऊपर खर्च नहीं करते, अपने घर में खर्चा नहीं देते, इतना बुखल है, एक एक गिन गिन के पैसे को रखते हैं। ये भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो बुखल है ना, ये भी एक ऐसी सिफत है जो शैतान को बहुत पसंद है। शैतान जो है वो उसको पसंद करता है जो बखील होता है। बखील जो है, चाहे वो नेक हो, लेकिन शैतान को वो ज्यादा पसंद है, बजाय इसके के जो सखी होता है और वो फासिक होता है, उससे ज्यादा वो किसको पसंद करता है? बखील को। और उस कहता है कि जो सखी है उसको नापसंद इसलिए करता है, कहता है ये किसी वक्त भी अल्लाह ताला की तरफ पलट सकता है खर्च करके अल्लाह के रास्ते में। लेकिन बखील जो है, वो बुखल जो ऐसी चीज है जो इंसान को अल्लाह की नाराजगी की तरफ लेकर जाती है, हकदारों के ऊपर खर्च नहीं इंसान करता और गुनाहगार होता है इंसान, ये इसराफ भी ना करे और बुखल भी ना करे। तो यहाँ पे तरीका कार स्पेंडिंग का बताया गया, और जिसने मियाना रवि इख्तियार करी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो फकीर नहीं होगा, फकीर नहीं होगा। वो देखे ना जो तरीके के साथ चलता है, ना एक एक्सट्रीम पे ना दूसरी पे, ना तो ये सोचे कि आज तो मेरे पास बहुत है तो जितना भी खर्च करूं क्या फर्क पड़ता है, और उसको उड़ाते फिरे, ना ही ये करें कि बुखल के साथ इतना ऐसे हो जाएंगे किसी को तोहफा भी देना तो गिन गिन के दे रहे। हदीस में आता है कि जब सुबह होती है ना, तो दो फरिश्ते आसमान से नाजिल होते हैं, एक कहता है अल्लाह खर्च करने वाले को और अता कर, और ए अल्लाह जिसने रोक लिया उसका पहला भी जाया कर दे। ये फरिश्ते दुआ देते हैं या बददुआ देते हैं ऐसे इंसान को, तो इसे अंदाजा आप करें कि फरिश्तों की भी दुआएं और बददुआएं उनके लिए हैं, जो एक जो खर्च करने वाला है, खर्च करने वाला अल्लाह ताला को पसंद है और अल्लाह ताला उसको और अता फरमाता है अपनी जनाब से, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करे। अल्लाह के रास्ते में तो जितना भी खर्च कर ले तो उसकी मुजम्मत नहीं है, वो तो अच्छा ही है। अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करने में, मगर ये ना करे इंसान के सारा का सारा ही दे दे के उसके बाद खुद फकीर बन के बैठ जाए रोता भी। हाँ, हमें सहाबा कराम की ऐसी मिसालें मिलती हैं जिन्होंने सब कुछ दे दिया, लेकिन ये उसके लिए है जो बाद में पछताने ना बैठ जाए। बाज दफा हम कुछ दे के फिर उसके बाद पछताते हैं, आए मैंने क्यों दे दिया, मुझे क्या जरूरत थी उस वक्त देने की, उस वक्त मैं बड़ी सखी बन गई थी, पता नहीं मैंने तो लेक्चर सुन लिया था और फिर मैंने दे दिया, अब तो मुझे अफसोस होता है मैंने क्यों दिया। तो इससे बेहतर है कि फिर आप देते ही ना, क्योंकि वो भी अमल जाया हो जाता है। ठीक है, तो याहिया बिन जकरिया से शैतान मिला तो उन्होंने पूछा है इबलीस मुझे खबर दे कि लोगों में तुझसे सबसे ज्यादा पसंद कौन है और सबसे ज्यादा नापसंद कौन है। तो उसने कहा सबसे ज्यादा मुझे वो अच्छा लगता है जो मोमिन हो मगर बखील हो, और सबसे ज्यादा मुझे बुरा वो लगता है जो फासिक है लेकिन सखी है। फासिक वो है बड़ा गुनाहगार है लेकिन सखी है, यानी सखावत उसको बहुत नापसंद है। तो हजरत याहिया ने कहा कि भला ये कैसे मुमकिन है? तो उसने कहा कि बखील का बुखल काफी है, उसको काफी हो जाएगा, वो उसका बुखल मेरे लिए काफी है, इसलिए कि मैं उसको फिर अल्लाह के रास्ते से इसी से दूर कर देता हूँ। और फासिक की जो सखावत है ना, मैं इसलिए उसे डरता हूँ कि उसकी सखावत की वजह से मुझे डर लगता है कि उसका दिल अल्लाह की तरफ कभी भी मायल हो जाएगा। लेकिन इतना ज्यादा शैतान भी बुखल के ऊपर इंसान को उभारता है, कहता है खर्च ना करो। और इंसान बचा बचा के रखता है, बचा बचा के रखता है और फिर छोड़ के चला जाता है उसको, कब्र में चला जाता है जहां पे माल उसके साथ नहीं जाएगा, वो बचा हुआ माल वहीं दुनिया में रह जाएगा। तो इंसान को चाहिए कि अपनी जिंदगी में वहां पे लगाए जहां पे उसकी आखरत के लिए तोशा बन जाए या उसकी जरूरियात पूरी हो जाए, वरना ये माल तो दूसरों का है, अपना तो कुछ भी नहीं है। इस तरह ऐसे लोगों को भी देखा है कि जो इतनी फजूल खर्ची करते हैं, इतना इसराफ करते हैं, इतना हाथ खोले रखते हैं कि फिर बाद में ये हो जाता है कि अफसोस करते रहते हैं कि कोई वो दिन भी होते थे हमारे पास हुआ करता था, हमने कदर नहीं की। तो भाई आपने उस वक्त क्यों लुटाया इस तरह? तो देखिए अल्लाह ताला ये भी सिखाता है ना कि किस तरह आपने अपने माल के साथ बिहेवियर रखना है। ऐसे जब इंसान लुटाता तभी है जिस वक्त कि उसको इसकी कदर नहीं होती। तो ऐसे ना लुटाओ कि जाया कर रहे हैं, इधर इसराफ इधर उसराफ, जहां पे 100 खर्च करने हैं वहां पे 500 खर्च कर रहे हैं। क्यों, 100 में भी तो काम हो रहा था, लेकिन हम 500 खर्च करने हैं क्योंकि साथ दिखावा भी है। तो क्या होगा अगर तुम ये बात नहीं समझोगे तो क्या होगा? फतह खुदा मलूम महसूरा, अल्लाह ताला को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम खुद मलामत जदा और हसरत जदा होगे। ये जो मलामत जदा और हसरत जदा है ना, ये मलूम का ताल्लुक पहली बात से है, वला तजल यदा का मगलूला, और महसूर का ताल्लुक दूसरी बात से, वला तबसुत कुल्लल बस्त। समझ आई? अगर तुम बुखल करोगे तो मलामत जदा होगे। मलामत जदा कैसे? याद रखिए कि जो बखील होता है ना उसको कोई पसंद नहीं करता, कोई पसंद नहीं करता उसको, और वो लोगों में भी लोग भी उसको पर मलामते ही करते हैं, और बुखल जाहिर हो जाता है इंसान का, ऐसे छुपा नहीं रहता। तो अल्लाह के यहां भी उसके पर मलामत है और लोग भी कभी उसको पसंद नहीं करेंगे। हातिम ताई का नाम आज तक आप देखते हैं ना, सखावत का एक बहुत बड़ा नाम है, हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से भी पहले वो फौत हो चुका था, लेकिन सखावत उसकी इतनी थी कि आज तक देखे इतने साल गुजर गए, कई और लोग आए होंगे गए होंगे, लेकिन उसका नाम आज तक जिंदा है, इसलिए कि वो लोगों में सखावत करता था, लोगों के काम आता था, लोगों पे स्पेंड करता था। तो बकील तो सारी नेकी से ही महरूम हो जाता है, जिसने देख देख के गिन गिन के लोगों को खाना खिलाना, गिन गिन के देख देख के लोगों को कुछ देना, गिन गिन के देख देख के सदका करना, जकात भी देनी तो गिन गिन के देनी, ये क्या नेकी पाएगा? और एक दिन यही होगा ना कि वो कब्र में चला जाएगा और उसका माल यहीं पड़ा रह जाएगा, फिर लोग उड़ाएंगे और कभी कभी तो बच्चे ही जाया कर देते। तो इसको कब्र में नहीं लेके जाना, अपनी आखरत के लिए इसको बनाना है। तो अगर तुम बुखील हो गए तो मलामत ज्यादा हो गए, और अगर तुम फजूल खर्चोगे महसूरा होगे, हसरत ज्यादा, बाद में हसरतें करोगे कि आए क्या कर बैठा, क्यों मैंने इतना ऐसे एक्स्ट्रा वगैरह खर्च किया, रिग्रेट होगा तुम्हें। अल्लाह ताला ने हमें हर एक चीज की जहां पर ताकीद की है, बताया, रहनुमाई फरमाई है, हिदायत का रास्ता है ये कुरान। हाँ देखें, रिस्क के मामले में, माल खर्च करने के मामले में भी हमारी रहनुमाई की है। और याद रखें कि कभी भी मोहताजों, फकीरों, मिसकीनों, इनके ऊपर खर्च करने से आपका माल कम नहीं होगा, बल्कि हदीस में आता है कि अल्लाह ताला की तरफ से तुम्हारी मदद की जाती है और तुम्हें रिस्क दिया जाता है तुम्हारे कमजोरों की वजह से, जयीफों की वजह से। माशरे के बेकस लोग हैं या कमजोर हैं, कमजोरों में बच्चे भी आते हैं, यतीम भी आते हैं, औरतें भी आती हैं, इनके ऊपर खर्च करने की वजह से अल्लाह तुम्हारी मदद करता है, तुम्हें रिस्क देता है। इन्ना रब्बका यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाउ व यक़दिर, अल्लाह ताला जिसका चाहे रिस्क कुशादा कर दे, जिसका चाहे तंग कर दे। ये भी इंसान ना सोचता है कि रिस्क जिसको ज्यादा मिला है, पता नहीं अल्लाह को कितना पसंद है इसलिए इसको ज्यादा दिया हुआ है, और जिसके पास कम है पता नहीं इसकी कोई सजा ही होगी जो इसको कम दिया। नहीं, ऐसा नहीं, बल्कि अल्लाह ताला की अपनी हिकमतें हैं। उसने जो रिस्क दिया या किसी को ज्यादा या कम, तो वो उसकी इम्तिहान करने के तरीके, आजमाने के तरीके। जिसको कम दिया उससे भी उसकी आजमाइश है, उसका टेस्ट है उसके सबर का। जिसको ज्यादा दिया उसमें भी उसके शुक्र का टेस्ट है कि शुक्र करता है या नहीं। और इसके अंदर कभी भी ये चीज को ना सोचे कि पता नहीं आए ये तो बड़े अच्छे ही होंगे जो, या कोई इंसान खुद अपने आप में सोचे कि मैं तो बहुत अच्छा ही हूं इसलिए मुझे इतना मिल रहा है, और पता नहीं इसी तरह मुझे आखिरत में भी मिलेगा। यहाँ या देखो हमें क्या, हमारे तो हम तो जद्दी पुश्ती अमीर लोग हैं और ऐसे हैं, और हमें तो इतना कुछ मिला हुआ, तो इसका मतलब है कि हम बहुत अच्छे ही लोग हैं। ये कहाँ से हमें मिला, जबकि अल्लाह ताला फरमाता है कि ये सब कुछ तुम्हारे लिए टेस्ट है, ये सब टेस्ट के तरीके अल्लाह ताला के हैं। अल्लाह ताला देखना चाहता है कि कौन पाकर क्या करता है और कौन खो के क्या करता है। कभी अल्लाह ताला दे के और फिर ले लेता है, कभी-कभी दिया होता है किसी को और फिर अल्लाह ताला उसको फकीर कर देता है। ये भी अल्लाह ताला का तरीका है आजमाने का। तो हमें नहीं पता हम किस किस तरह हमारे ऊपर आजमाइश आती है, हमारे ऊपर टेस्ट आते हैं, ताकि पता चले कि कौन कितने पानी में है। तो कभी कोई माल की फरावानी को इस तरह अपने लिए ना समझे कि मैं बहुत अच्छा ही हूं जो मुझे इतना कुछ मिल रहा है, और कभी कोई इस बात से दुखी ना हो कि पता नहीं अल्लाह ने हमें नहीं दिया तो हमारे कोई इसमें कसूर है या हमारे कोई इसमें कोई ऐसी बात है हमारी तरफ से। नहीं, हम अल्लाह को नापसंद है नहीं। अल्लाह के पैगंबर जो थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने चॉइस दी थी कि आपने नबी बादशाह बनना है या नबी अब्द। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबी अब्द बनने को चूज किया, जिब्राइल अलैहि सलाम की तरफ देखा, क्योंकि एक फरिश्ता आया था ना ये पैगाम लेके कि अल्लाह ताला आप वो फरमाता है कि आपको इख्तियार है आप नबी बादशाह बने या नबी अब्द बने। जिब्राइल अलैहि सलाम की तरफ देखा तो उन्होंने इशारा किया कि नबी अब्द बनना जो है ना वो सही है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लिए क्या चूज किया था कि एक दिन खाऊं और एक दिन भूखा रहूं, ये चूज किया अपने लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लिए खुद चूज किया था, ऐसा नहीं था कि अल्लाह ताला की तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई तंगी वो तंग करने के लिए ऐसा किया गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने लिए ये चूज किया था। तो अल्लाह ताला के पैगंबर आप देखें अक्सर फखर फाके में रहे, ये नहीं कि अल्लाह ताला को ना पसंद थे, वो तो अल्लाह ताला के सबसे प्यारे बंदे थे। तो फिर उनको अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दिया था, लेकिन ये भी मतलब नहीं कि जो भी बुरा होगा उसके पास ज्यादा होगा। हजरत दाऊद अलैहि सलाम, सुलेमान अलैहि सलाम को भी बहुत मिला था। तो आप इसको स्टैंडर्ड ना बनाए कभी भी, ये कौन अच्छा है या कौन बुरा है, ये अल्लाह के फैसले हैं और उसमें हिकमतें हैं, ये उसकी प्लानिंग है। इन्नहु काना बिइबादिही है खबीरुम बसीरा। तुम क्या सोचते हो अल्लाह को पता नहीं है कुछ? और ऐसे ही कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूट होता जा रहा है, तकसीम होता जा रहा है माल, कहीं ज्यादा मिल रहा है कि कम। नहीं, वो खबर रखने वाला, उसको पता है, सबका पता है, वो सबको देख रहा है, उसको पता है कि किसको कितना देना है किसको नहीं देना। एक जगह हदीसे कुदसी आती है कि मेरे बंदों में से कोई ऐसा है कि अल्लाह उसे गनी कर दे तो उसके दीन में नुक्स आ जाए, और मेरे बंदों में कोई ऐसा है कि अल्लाह उसको फकीर कर दे तो उसके दीन में नुक्स आ जाए। तो अल्लाह को पता है कि अगर इसको मैंने गनी कर दिया ना ये दीन से भाग जाएगा, अल्लाह को पता है अगर इसको मैंने फकीर कर दिया तो ये दीन से भाग जाएगा। अल्लाह ताला की अपनी हिकमतें हैं। वला तख्तलू औलादकुम खशयत इमलाक, और ना तुम कत्ल करो औलाद को मुफलिसी के खौफ से। यहाँ पे चूंकि रिस्क की बात आ रही है तो ये भी बता दिया गया कि बाज दफा, बल्कि अक्सर दफा रिस्क की कमी के खौफ से औलाद को कत्ल कर दिया जाता है। क्या ये हमारे साथ खाने में शामिल हो जाएगी? आज कहते हैं पढ़ाएंगे कैसे, फीसें इतनी ज्यादा हैं, खिलाएंगे कहाँ से, पहनाएंगे कहाँ से, महंगाई इतनी हो गई है, लिहाजा कम बच्चे ही अच्छे। नहीं, तुम अपना माइंड सेट सही करो। फरमाया यहाँ पे सही कर दिया माइंड सेट, नहनु नरजुकुहुम व इय्याकुम। देखिए पीछे से सेटिंग खराब होती है ना, तभी काम आगे खराब होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया पीछे सेटिंग खराब है कि जहां हम सोचते हैं ये मेरा माल है, मैं जितना मर्जी खर्च करूं, मैं जितना मर्जी उड़ाऊं, मैं चाहे इसको आग लगाऊं, मुझे कौन पूछेगा। तो अमल जो बाद में हुआ रॉन्ग हुआ, वो इसलिए रॉन्ग हुआ कि उसके पीछे जो माइंड सेटिंग थी ना वो सही नहीं थी। माल को अपना समझा ना, इसलिए। यहां पे भी क्या है, यहां पे ये समझा कि मैं खिलाता हूं औलाद को। आदमी समझता है मैं पिलाता हूं, मैं खिलाता हूं, मैं कमाता हूं तो ये खाते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है नहीं, तुम नहीं खिलाते। नहनु नरजुकुहुम व इय्याकुम, हम रिस्क देते हैं इनको भी और तुमको भी। सूरह अनाम में भी एंड में यही बात आई है कि औलाद को कत्ल ना करो। और इस वजह से खास तौर पे कत्ल करना, वैसे ही कत्ल करना जायज नहीं है कि वो जब बेटियां होती थी तो उनको जिंदा दरगोर कर देते थे कि बेटी है हमारा कोई दामाद बन जाएगा, हमारी गैरत की बात है, बड़ी होगी तो कोई ऐसे हमारे इज्जत के ऊपर हर्फ ना आ जाए। वो इसके ऊपर बेटियों को कत्ल कर देते थे, वो भी गुनाह है। लेकिन एक बहुत बड़ा गुनाह ये भी है कि मुफलिसी के खौफ से, तुम क्या सोचते हो, तुम खिलाते पिलाते हो, तुम अर-रज़ाक हो, अल्लाह अर-रज़ाक है। जब हम अस्माए हुस्ना पढ़ते हैं तो या रज़ाक को तस्बीहां तो कर देते हैं, ये कि कभी ये सोचा भी है कि रज़ाक कौन है, रिस्क देने वाला? हम तो अपने आप को रिस्क देने वाला समझते हैं। मैं लाता हूं, मैं कमाता हूं तो तुम खाते हो। नहीं, मैं कमाता तो हूं, मैं लाता तो हूं, लेकिन अल्लाह खिलाता तो। जहां पर ये खराबी आ जाती है वहां पे फिर औलादों का कत्ल शुरू हो जाता है। फिर ये होता है ना कि जाहिर है हम कैसे सस्टेन करेंगे, जाहिर है इंसान की तो लिमिटेशन है। इंसान जब अपने ऊपर सोचता है तो फिर उसको ये होता है कि नहीं। इसी तरह मुल्कों में आता है, जो मुल्क भी ये सोचने लगते हैं आबादी बढ़ गई तो हमारे रिसोर्सेस तो कम है, लिहाजा फैमिली प्लानिंग करो, बच्चे बंद कराओ, इनके बच्चे ज्यादा हो गए तो खाएंगे कहाँ से। तो फिर वो ऐसी ऐसी नारे, वो बूंदे आबादी के इश्तेहार भी टीवी पे चलाते हैं, दो बच्चे ही अच्छे और इस तरह की चीजें, और दो ही बच्चे दिखाते हैं। और फिर इतना इसको अल्लाह ताला हमें माफ करे। मैं तो सोचती हूँ जब ये आयतें पढ़ती हूँ, कहती सोचती हूँ या अल्लाह, हम तो बिल्कुल इनसे ऑपोजिट चल रहे हैं, बिल्कुल। यानी वो जो वेस्ट ने दिखाया ना हमें कि माँ बाप की कोई कदरों कीमत नहीं है, मेक फन ऑफ देम, और वो तो ऐसे बेकार सी चीज है एक, और इनका कोई वैल्यू नहीं है, और उनके प्रोग्राम्स में भी माँ बाप को डिग्रेड करके बताया जाता है और उनके मजाक उड़ाए जाते हैं और उनको ऐसा घटिया दिखाया जाता है। वो ही हमने बना लिया। रिश्तेदारों को वो भी नहीं पूछते, उनके भी दोस्तियां यारियां, उनको तो पता ही नहीं हमारे रिश्ते हैं कहाँ, क्योंकि कोई किसका बच्चा है वो ही नहीं उसको पता, तो रिश्तेदारियों का आगे क्या पता होगा। और रिश्तेदारियां उनके यहाँ कोई वैल्यू नहीं रखती। ठीक है, हमने भी वही करना शुरू कर दिया। इसी तरह उनके यहाँ भी औलाद को पैदा करना, हम क्यों औलाद को पैदा करें? औरत को यह है कि मेरा फिगर खराब हो जाएगा, और ये फैशन ही नहीं है, कम से कम बच्चे होने चाहिए तो वो ही उनको खूबसूरती लगती है। एक तो बहुत देर से हो ताकि हम यंग नजर आए, और सेकेंडली कम से कम बच्चे हो। और मुझे याद है जो छोटे होते हम देखते थे अखबारों में, अपने मुल्क में अखबार में जहाँ कार्टून बने होते थे ना, तो वहां पे कोई मौलाना दिखाए हुए हैं, साथ ड्रॉ की हुई है एक बुरके वाली खातून, और साथ एक बच्चों की पूरी लाइन दिखाते थे। यानी ये एक लतीफे बनाए हुए कि देखो ये इनके मौलवियों के ऐसे बच्चे होते हैं। ये आप देखते हैं कि किस तरह माइंड सेटिंग चेंज की जाती है। किस तरह उसी चीज को डिग्रेडिंग करके दिखाया जाता है, कैसे उसको मजाक बनाया जाता है। एक मोटर बाइक है, उसके ऊपर कोई मौलाना बैठे हैं, पीछे बुरके वाली बैठी है, पीछे इतने सारे बच्चे, को ऊपर है, को नीचे है, को कहाँ है, सारे उसके पास 5-6 बच्चे बिठाए हुए, उसको मजाक जब आप बना लेते हैं, तो अरे फिर जब एक माशरे में इसी तरह चीजों को रिवाज दिया जाता है ना, कि ये चीज बुरी है, और क्या दिखाया गया, मॉडर्न सी औरत जा रही है और साथ बस एक बच्चा इधर, एक लड़का और एक लड़की है, मियाँ बीवी है, और बस 2 ही बच्चे अच्छे हैं, बस वो ये ठीक है। और ये सिर्फ लोगों के लेवल पे नहीं है, स्टेट लेवल पे इन चीजों को तरबीज दी जाती है। हमसे अच्छे तो वो गरीब लोग हैं जो के कहते हैं कि जब उनसे कहा जाता था ना कि नहीं कम करो बच्चे, कम करो, तुमने क्या बच्चों में बच्चे पैदा करा, तो कहते हैं आप खिलाते हैं बच्चों को। एक औरत को ऐसे कहते हुए सुना, कहती आप खिलाते हैं क्या, हमने खिलाना है कि हम अपने बच्चों को पालने वाले हैं, आप क्या हमें रोक रहे हैं। अब उसकी अकल उतनी, उसको ये नहीं पता कि अल्लाह खिलाता है, लेकिन एटलीस्ट उसको ये तो समझ है कि आप तो नहीं खिला रहे, आप हमें क्यों मना कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये फरमाया कि ज्यादा बच्चे पैदा करने वाली औरतों से शादी करो, क्योंकि कयामत के दिन मैं तुम्हारी कसरत पे फख्र करूंगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में इजाफा हो रहा है। वो औरत ये सोच के बच्चा पैदा करती है कि मेरे मेरे औलाद की वजह से मेरे नबी फख्र करेंगे, उनकी उम्मत में इजाफा हो। तो अगर ये सोच के कोई करे तो ये भी उसकी नेकी, ये उसका जज्बा और ये उसकी नीयत कितनी बड़ी है। और आज हमारे क्या मयार हो गए, और क्या हमने चीजों को समझ लिया कि ये ज्यादा बेहतर है, जो बिल्कुल ऑपोजिट है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि ज्यादा बच्चे हो, हम कह रहे हैं कम से कम हो तो अच्छा है। हम किधर इनको पालते फिरेंगे, किधर इनका झंझट उठाएंगे, किधर इनकी मुसीबतें उठाएंगे, छोड़ो हमें क्या जरूरत। लेकिन कुरान हमें क्या बताता है, नहीं कत्ल करो औलाद को, खास तौर पे मुफलिसी के खौफ से मत कत्ल करना। खास तौर पे ये कभी ना सोचना कि कैसे पालेंगे। बुखारी और मुस्लिम की हदीस में है कि शिर्क के बाद आप सबसे पूछा गया ना सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है, फरमाया अल्लाह ताला के साथ शरीक बनाना, हालांकि वो तेरा खालिक है। और उसके बाद पूछा गया इसके बाद, तो फरमाया इस डर से अपनी औलाद को कत्ल करना कि वो तुम्हारे साथ खाना खाएगी। यानी ये भी एक खौफ है कि हमारे साथ किधर उसको रखेंगे, हमारे तो घर इतने बड़े नहीं, हम तो इतना कमाते नहीं है। आजकल कोई लोग पूरा पूरा अपना बजट बनाते हैं, एक बच्चे पे इतना स्पेंड होता है, मेरी तनख्वाह इतनी है, 2 बच्चे होंगे तो तभी गुजारा चल सकता है, 2 से 3रा हो गया तो वो किधर से आगे कमाएगा, खाएगा, क्या करेगा, किधर रहेगा। तो उनको बेहतर स्टैंडर्ड लाइफ देने के लिए ना हम बच्चे ही नहीं करते। कत्ल के भी कई तरीके होते हैं, ये भी कत्ल है कि प्रेगनेंसी को ही खत्म कर देना, किसी खास लेवल पे जाके करना वो कत्ल होता है। और सिर्फ प्रिकॉशनरी मेजर्स भी लेना तब जायज है कि जब ये इस वजह से हो कि ठीक है माँ की सेहत इतनी नहीं है, माँ इतनी काबिल नहीं है, माँ वीक है, या और कोई रीजंस हो सकते हैं, या फिर एक बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए तो फिर परमानेंट तौर पर अपने आप को बांझ कर लेना, इसका भी इस्लाम के अंदर इजाजत नहीं है कि परमानेंटली ऐसे तरीके, अनलेस के माँ की जान को खतरा है, वो कहते हैं अगर आप प्रेग्नेंट होंगी तो आपकी जान को खतरा है तब तो ठीक है, लेकिन अदरवाइज टेम्परेरी प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जा सकते हैं। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में भी अजल किया करते थे लोग, लेकिन उसमें भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमा दिया था, इसको मना नहीं किया था, मगर ये फरमाया था कि ये भी किसी जो रूल जिसने आना है उसको रोक नहीं सकता। ठीक है, तो इतना टेम्परेरी तौर पर जो भी मेजर ले सकते हैं आप, मगर वो भी रिस्क के डर से नहीं कि खिलाएंगे कहाँ से, और रीजंस हो सकते हैं, मगर अगर ये रीजन है तो ये भी फिर नाजायज है। ठीक है, तो कोई भी कत्ले औलाद की सूरत, चाहे जिंदा दरगोर कर देना जैसे उस जमाने में करते थे, या पेट में ही कत्ल कर देना इन कतला हम कहना खत अम कबीरा, इनका कत्ल करना बड़ी खता है, बड़े गुनाह है ये। यानी कितने ही लोग आज शरीफ बन के घूमते हैं लेकिन वो कातिल हैं, कातिल उनको कि कत्ल कहा गया, कत्ल, और वो भी अपनी ही औलाद का, अपनी ही वजूद की एक्सटेंशन का। देखिए आज इंसानियत किस जगह पे पहुंच गई, सोचें ये कौन कर सकता है। ये भी जाहिर है इसके पीछे भी शैतान है जो इंसान से ये करवाने वाला है। इसको भी बोझ समझा देते, हमारे पर बोझ पड़ जाएगा, हमारी तो इतनी जायदाद नहीं, आपको क्या पता रहे। इसको तो अल्लाह देने वाला है, उसने बता दिया हम हैं जो तुम्हें भी खिलाते हैं और उसको भी खिलाते हैं। लेकिन क्या इंसान का माइंड हो जाता है कि वो अपनी औलाद को कत्ल करने के लिए मतलब आमादा हो जाता है। और ये जो जो ये पेट के अंदर औलाद को कत्ल करना है, ये भी जो एक लेवल पे जाके, यानी जब एक बच्चे के अंदर रूह पड़ जाती है, वो इतनी वीक्स का हो जाता है कि उसके अंदर रूह पड़ जाए, तो उसके बाद उसको अबॉर्ट कराना कत्ल है। जब रूह नहीं पड़ी भी तब भी वो एक लिविंग थिंग तो है, उसको खत्म करना कोई कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन उसके बाद तो कत्ल है। और जिस तरह से एबॉर्शन की जाती है, जो उसके तरीके हैं, जरा प्लीज आप लोग मेथड्स ऑफ एबॉर्शन को जरा गूगल करके देखिएगा, कैसे कैसे उसको अल्लाह ताला माफ करे, कि सोच के भी इतनी तकलीफ होती है कि कैसे एक बच्चे की बोटी बोटी कर दी जाती है, फिर उसको निकाला जाता है, उसके सर को कैसे क्रश किया जाता है, फिर निकालते हैं। तो ये कोई ऐसी बात नहीं, कोई बहुत प्लेजेंट बात नहीं, कहीं कुछ डिफरेंट तरीके हैं, कहीं कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट डाल के उसको उस सैक के अंदर, और उसको किस तरह पॉइजन किया जाता है बच्चे को, उसको बच्चा ब्रीथ कर लेता है और पॉइजन हो जाता है, कहीं क्लैंप से उसको पुल किया जाता है, उसके स्कल को, उसकी खोपड़ी को जैम करते हैं और वैक्यूम से उसका ब्रेन निकालते हैं, फिर वो जो खोपड़ी है वो तो कोलैप्स कर जाती है, फिर बाकी सारी बॉडी निकालते हैं। जो हम घरों में वैक्यूम यूज करते हैं, इससे कहीं ज्यादा पावरफुल वो वैक्यूम होता है, तो जिससे उसकी बोटियां की जाती हैं। हाँ, इंसान कैसे ये कर लेता है। अल्लाह ताला हमें माफ करे। तो ये भी कातिल है, ये भी जुल्म है, ये कितना बड़ा वैश्याना अमल है। और कत्ल, चाहे आप बाहर आके उसको कत्ल करें या फिर उसको अंदर कत्ल कर रहे हैं, उसके अंदर जब रूह पड़ गई है तो वो कत्ल ही है। अल्लाह ताला उस मासूम का, जो अपना हक खुद नहीं ले सकता, अल्लाह ताला उसका वकील बन के खड़ा। लोग पूछते हैं ना कि वालदेन के तो हकूक बहुत बताए गए, औलाद का कोई हक बताया गया है कुरान में? हाँ, तुम्हारे रब ने तुम्हें जीने का हक दिलाया तुम्हारे वालदेन से, वरना वो वालदेन ही कातिल बन जाते। तो किसी वजह से भी कत्ल करना ये जुर्म है, लेकिन यहां पे खास तौर पे क्योंकि पीछे रिस्क की बात आ रही थी, तो इसलिए खशियत इमलाक कहा गया। अब आपको बुरा तो लग रहा होगा कातिल लफ्ज के, कोई कातिल है आज के दौर के अंदर, लेकिन ये तो कुरान कह रहा है, वला तकतलू इन्ना कतला हूं। तो इसलिए जब अल्लाह ताला के ऊपर भरोसा होता है ना कि वो खिलाता है हमें भी और वो ही खिलाएगा, या वो ही टेक केयर हमारी भी करता है, वो ही उनकी करेगा, तो फिर इंसान के लिए औलाद को पैदा करने का कोई मसला नहीं रहता। लेकिन जिस वक्त तवक्कुल अल्लाह पे नहीं है, अपने बाजुओं पे, तो फिर इंसान कहता है इस बच्चे को खत्म कर दो, इस जिंदगी को मिटा दो। अल्लाह अकबर, कितने बड़े खताकार हैं वो पेरेंट्स जो औलाद के पैदा होने से पहले ही उनकी पूरी पूरी इंश्योरेंस लेना चाहते हैं कि ये पैदा होगा तो उसका रिस्क भी होगा, और उसका ये भी होगा, और उसका ये भी होगा, और उनकी पूरी जिंदगी का उनका रिस्क की गारंटी लेना चाहते हैं। तो ये जो नारा है, कम बच्चे खुशहाल घराना, ये नारा ही गलत है, नारा गलत है और सरीहन हदीस की नाफरमानी है। चाहे बेटियां हो या बेटे हो, बाज जगह पे बेटियों को कत्ल कर दिया जाता है कि बेटी हो गई है, यूं ही पता चला उसके अंदर अल्ट्रासाउंड में कि बेटी है, तो उसी वक्त उसको अबॉर्ट करा दिया गया, यानी उसकी जेंडर भी डिटरमिन हो गई हुई थी, जेंडर का भी पता चल गया था। तो एक जिंदगी है, एक जिंदा इंसान है वो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने दो या तीन बेटियों की परवरिश की, उनको पाला, अल्लाह से डरते हुए उनकी तरबियत की, उनकी शादी की, वो और मैं तो जन्नत में ऐसे होंगे, अपनी उंगलियां मिला के बताएं, उनको कोई परवाह ही नहीं। जन्नत किसने देखी ना, वो जब जाएंगे तो देखे जाएंगे, यहां पे तो कत्ल करो, कितने दुख की बात है।